Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company-specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2331-0481, and 2371-7106. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
शुभ संध्या, नमस्कार, अभिवादन. आप जुड़ गए हैं मार्केट मंत्र से, जहां हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की ताजा खबरों पर चर्चा करेंगे. श्रोताओं, क्योंकि आज शनिवार है, तो आज हम आपके प्रश्नों को भी सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे. अपने सवाल पूछने के लिए आप हमें इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं. ये नंबर है 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106. दिल्ली से जो भी बाहर के श्रोता हैं जो हमें कॉल करेंगे, वो दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. लेकिन याद रखें श्रोताओं कि हम किसी भी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे. आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली. शरद जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिवादन.
वार्म वेलकम शरद.
थैंक यू सो मच प्राची, थैंक यू सो मच राजेश, और सभी श्रोताओं को मेरा दिल से अभिनंदन.
चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां.
West Asia diplomacy intensifies as U.S. envoys head to Pakistan. Tehran denies direct negotiations. Benchmark domestic indices snap two-week rising streak. Sensex and Nifty tumbles around 2%. And global crude oil prices surge this week.
अमेरिका के राजदूत पश्चिम एशिया में जारी तनाव के संदर्भ में द्विपक्षीय वार्ता करने पाकिस्तान पहुंचे. तेहरान ने सीधी बातचीत से किया इनकार. प्रमुख घरेलू सूचकांकों में दो सप्ताह से जारी बढ़त का सिलसिला टूटा. सेंसेक्स और निफ्टी में लगभग 2% की गिरावट दर्ज की गई. और इस सप्ताह वैश्विक कच्चे तेल के दाम बढ़े.
Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. We move on to the first headline story. Iran's foreign minister, Abbas Araghchi, has arrived in Islamabad for crucial talks. Tehran signaling that its position on ending the conflict will be conveyed to Pakistan rather than directly to the United States. Iran's foreign ministry has also made it clear that no direct meeting is planned with Washington. However, the United States has confirmed that its special envoy, Steve Witkoff, and senior advisor, Jared Kushner, will travel to Pakistan for talks with Iranian counterparts. Talking to reporters, White House Press Secretary Caroline Leavitt confirmed the development, stating that talks would be conducted directly. Meanwhile, Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi has said that after his meetings in Pakistan, he will travel to Oman and Russia. The aim, he said in a post on social media, is to coordinate with our partners on bilateral matters and consult on regional developments.
इस खबर पर श्रोताओं हम विवेचना करेंगे, मगर उससे पहले आइए जुड़े अपने पहले कॉलर से. इनका नाम है अंकुर और ये हैं दिल्ली से. अंकुर जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
हाँ, नमस्कार जी. नमस्कार शरद कोहली जी.
नमस्कार.
सर निफ्टी 50 में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? मैं फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी एज 44 है और क्या कहते हैं थोड़ा थोड़ा 5,000-7,000 रुपए पर मंथ में लगाना चाहता हूँ, तो प्लीज हेल्प करेंगे
जी। निफ्टी 50, अंकुर आपको पता होगा कि जो निफ्टी में जो 50 शेयर होते हैं इसीलिए उसको निफ्टी कहा जाता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50, तो उसको शॉर्ट में हम निफ्टी कह देते हैं। तो उसमें आप लगाना चाहते हैं, विचार अच्छा है। थोड़ा सा मैं कहूंगा कि हालांकि इसमें रिस्क स्प्रेड हो जाता है क्योंकि आप एक साथ 50 स्टॉक्स में लगाते हैं, तो आपने तो वैसे देखा जाए तो आपके सवाल में आपने जवाब भी दे दिया, आपने कहा कि मैं 5,000-5,000 हर महीने लगा सकता हूं। पर अंकुर एक बात के लिए तैयार रहिएगा कि आपको लंबे वक्त का नजरिया रखना पड़ेगा। और आप पूछेंगे कि लंबा वक्त कितना है, कि भाई कितना लंबा नजरिया रखें? लंबा वक्त मतलब कल तक, परसों तक, 6 महीने तक, साल तक। कम से कम आपको मैं ये कहूंगा कि 5 साल से 10 साल तक का अगर नजरिया रखेंगे और लगातार करते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि आप एक ये एक SIP बन जाएगा। आप 15 दिन में करें, हफ्ते में करें, महीने में करें, 2 महीने में एक बार करें, तो एक प्रकार से सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बन जाएगा। और निफ्टी 50 में करने का फायदा यह है प्राची और अजय, जैसे मैंने बताया कि आप एक साथ निफ्टी की सारी कंपनीज में, और ये तो आप जानते ही हैं कि निफ्टी में वो कंपनीज होती हैं जो स्टॉक मार्केट में टॉप 50 कंपनीज होती है, मतलब उनकी मार्केट कैप पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी ट्रेडिंग वॉल्यूम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बहुत अच्छा विचार है, नेक विचार है अंकुर। तो आप मैं उम्मीद करता हूं थोड़ा सा और रिसर्च करिएगा कि शेयर मार्केट में एक हम अंग्रेजी में टर्म यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं वेगरीज, तो थोड़ी सी जो उतार चढ़ाव होते हैं मार्केट में उसको और रिसर्च करिएगा। पर क्योंकि आपका सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है तो आप इसको साथ साथ भी रिसर्च कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जब आपकी रिसर्च पूरी हो जाएगी तब आप शुरू करें, पर लंबे वक्त का इस शर्त पे मैं ये बात बोल रहा हूं। दोनों अपने माननीय एंकर्स की परमिशन से मैं ऐसी बात कम बोलता हूं। और आपको शुरू में राजेश ने एक डिस्क्लेमर भी पढ़ के सुनाया था कि आप अपनी रिसर्च करिए, अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, परंतु अगर आप लंबे वक्त का नजरिया लगते हैं तो मेरी ये बात सलाह है, वरना आप मेरी बात को बिल्कुल आप दरकिनार कर सकते हैं। एक कान से सुनिए और दूसरे कान से निकाल दीजिए, पर लंबे वक्त के लिए है तो बहुत ही नेक विचार है, ये मैं कह सकता हूँ।
जॉइनिंग अस फ्रॉम दिल्ली इज अमित, अ वार्म वेलकम अमित।
हेलो, हाँ जी जी, नमस्कार सभी को
जी।
सर नमस्कार। सर
नमस्कार।
सर मेरा प्रश्न ये दो है, एक तो ये है कि IT सेक्टर है, जैसे कि आपने सभी जानते हैं सर IT सेक्टर धड़ाम से गिरी पड़ी है।
हाँ जी।
और पिछले मतलब दिसंबर से लेके अब तक कम से कम 40% गिरी पड़ी है, ठीक है सर। जब क्लाउड AI जो भी है इशू आ रहे हैं उनके साथ सर, तो हमारी कंपनियां अपडेट उस तरह से या अपग्रेड हो रही हैं? अगर हो रही हैं तब भी IT सेक्टर पर इतने प्रेशर क्यों है? दूसरी चीज सर, जो हम यूरोपियन सॉरी एशियन देशों से जो हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए हम थोड़े एग्जांपल मलेशिया से हम पाम ऑयल खरीदते हैं, ठीक है सर। हेलो
जी जी जी,
बोलिए बोलिए।
तो पाम ऑयल मान लीजिए सर हम खरीदते हैं
जी,
तो हम उसका पेमेंट डॉलर में ना देंगे ना सर, हम क्या करें कि 10 करोड़ की मान लो हम पाम ऑयल इम्पोर्ट करते हैं, तो हम मलेशिया से जो चीज हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं वो 10 करोड़ की मान लीजिए धान गेहूं या बासमती चावल राइस जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो दोनों को हम वो नहीं कर सकते सर? इससे क्या होगा कि डॉलर ना कन्वर्ट करने पड़ेंगे ना हम डॉलर में पे करेंगे, तो हमें
जो दबाव
है अपने यहाँ
पे
सर
मतलब
वो भी थोड़ा कम हो सकता है, ऐसा कुछ प्रावधान है?
समझ आ गई बात आपकी। आपका पहला सवाल IT सेक्टर से था, वाकई मैं उस दिन किसी से बैठा था और बात कर रहा था, कोई स्टॉक मार्केट से रिलेटेड डिस्कशन था, तो मैंने कहा इस ये IT को किसकी नजर लग गई है, हमारा IT सेक्टर तो बूम बूम करता था, भारत का वर्चस्व है, भारत का रुतबा है IT सेक्टर में। पर ये सच है कि क्लाउड सर्विसेज और AI की वजह से मुख्यतः थोड़ा सा IT सेक्टर प्रेशर में आया। मुझे लग रहा है अमित ये थोड़ा सा ना सेंटिमेंट ड्रिवन भी है, जितनी बुरी हालत स्टॉक्स की हुई है उतनी बुरी हालत अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कुछ कंपनीज के रिजल्ट आए, हम यहां नाम नहीं लेते, पर जो टॉप की 4-5 कंपनीज है, इंसिडेंटली जब रिजल्ट सीजन होता है तो IT कंपनी के सबसे पहले रिजल्ट आते हैं क्योंकि ऑब्वियसली दे आर इनटू IT, तो उनके जो रिजल्ट्स आए हैं इतने बुरे भी नहीं है, कुछ एक कंपनीज का प्रेशर में है बस, सबके इतने बुरे नहीं है। मुझे लगता है अमित कि ये सेंटिमेंट पीछे रहेगा, और इन IT कंपनीज में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इन्होंने वाकई अपने आप को AI के लिए ट्रेन किया हुआ है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि AI की जन्मदात्री ये कुछ कंपनीज हैं, तो ये तो ऐसा हो गया कि पुत्र जो है अपनी मां का ही भक्षक बन गया, तो जिस AI को उन्होंने जन्म दिया आज वो AI उनके लिए खतरा बन गया है, तो इतना खतरा है नहीं हमें, तो इसलिए आप थोड़ा सा रिलैक्स रहें, मुझे लगता है हमें थोड़ा समय देना चाहिए और आपको ये कंपनीज चलती होने कहेंगे। आपका दूसरा सवाल बड़ा मजेदार था कि पाम ऑयल लेते हैं तो हम डॉलर में क्यों पे करते हैं? डॉलर 60-70% जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है अमित, वो आज भी डॉलर में होता है। आप जो बात कह रहे हैं उसको हम रुपी एक्सेप्टेबिलिटी कहते हैं। और आपको ये मैं जानकारी दे दूं कि 20 से अधिक इस समय देश हैं जहां पर भारत रुपए और उस देश की करेंसी में व्यापार करता है। धीरे धीरे इनकी बढ़ोतरी हो रही है। अब आप पूछेंगे कि भाई एकदम से क्यों नहीं, सारी जगह से क्यों नहीं करता, क्योंकि जब हम उनको रुपए में पेमेंट करेंगे या हम उनसे उनकी करेंसी में पेमेंट लेंगे, अब ध्यान दीजिएगा इस बात पर और ये सभी श्रोताओं के लिए, तो हम उस करेंसी का क्या करेंगे। मान लीजिए हमने मलेशिया से उनकी करेंसी में लिया तो हम उस करेंसी का क्या करेंगे। मैंने अगर रशिया से हमने पीछे जब रूबल में ट्रेड किया था तो उनके पास इतना रुपया इकट्ठा हो गया था, वो हमसे पूछते थे अब इस रुपए का हम क्या करें, क्योंकि जब तक किसी करेंसी की अमित ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं बनती, जब तक स्वीकारता नहीं बनती है तब तक हम उस करेंसी को इकट्ठे किए जाएंगे। ये तो ऐसा हुआ आपने कोई ऐसी करेंसी घर पे इकट्ठी कर ली, वो कहीं चलती तो है नहीं। तो धीरे धीरे रुपए की जैसे जैसे एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी, जो आप कह रहे हैं ये साकार एक दिन होकर रहेगा। आपके मुंह में घी शक्कर, पहली बात तो अमित आपने बहुत अच्छी बात कही है, परंतु भारत सरकार इसके लिए प्रयासरत है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और वित्त मंत्रालय इसके लिए निरंतर प्रयास करता रहता है कि किसी तरह रुपए की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती जाए। और मुझे लगता है डी डॉलराइजेशन, प्राची और राजेश, ये दिस इज ऑन द एनविल और ये होकर रहेगा। और जो अभी जो विश्व के हालात हैं उसमें मुझे लग रहा है और स्पीड से होगा, जरा युद्ध शांत होते ही आपको अमेरिकी अर्थव्यवस्था की जो सच्चाई है वो सरफेस पे आने लगेगी।
बिल्कुल शरद, आगे बढ़ते हैं और बैंगलोर से अपनी कॉल पिक करते हैं। ये है एनआर प्रसाद। मैं प्रसाद जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
थैंक यू, गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा, गुड इवनिंग शरद जी,
गुड इवनिंग,
दिस इज एनआर प्रसाद फ्रॉम बैंगलोर।
ऑफ कोर्स वी नो
शरद जी, वी नो इट वॉज गोइंग वेरी वेल एंड जस्ट want to give a feedback on the 11th April episode in evening. I know I made a mistake using some of the words and phrases were totally incorrect, but it doesn't mean that I should be humiliated and insulted so badly. In fact, I want to clarify that neither I follow politics, I don't know anything about the politics, big zero on that. But still, I was insulted and humiliated.
Oh. Mr. Prasad, we do not have any... Mr. Prasad, we do not
polite,
have any...
Be polite to the listeners, sir.
Please, if you...
Only request is be polite to the listeners.
Mr. Prasad, may I intervene? First of all the three people sitting in the studio, we are not aware of what you are referring to, because here the panelist and the anchors change. So if there is anything happened, I think there should be nothing to be... You are a very regular and a very respected listener. And let's, we look forward to your call. Come to the questions. You are a person who's always seeking knowledge. So let us use this time to give you knowledge.
All right. बढ़ते हैं दिल्ली की तरफ। दिल्ली से हमारी कॉल आ रही है योगेश की। योगेश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
जी, आप सभी को नमस्कार। और मेरा सवाल ये है कि हम ज्यादातर इन्वेस्टर जो म्यूचुअल फंड के थ्रू एसआईपी करते हैं और अपने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखते हैं, जो खुदरा निवेशक हैं
जी,
उनके लिए मैंने सुना है कि एक एक्सपर्ट ने बताया था कि ऐसे टाइम पे कैपिटल प्रिजर्वेशन उनकी ज्यादा उनकी ये राय थी, कैपिटल प्रिजर्वेशन पे ध्यान देना चाहिए इस माहौल में
जी।
तो कैपिटल प्रिजर्वेशन जो एक रिटेल निवेशक है वो कैसे कर सकता है कि वो एसआईपी रोके, तो वो भी जायज नहीं माना जाता कि एसआईपी को चलते रहना चाहिए
जी।
तो कैपिटल प्रिजर्वेशन का तरीका क्या है, एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि लमसम करने के लिए मार्केट का जो पी लेवल है, सेंसेक्स का पी लेवल, अब जस्टिफाइड किस लेवल पे समझते हैं, 19 पे, 20 पे या 20.5 पे, क्योंकि अभी 21 से ऊपर है
जी। चलिए, आपका पहला सवाल कैपिटल प्रिजर्वेशन पे है। कैपिटल प्रिजर्वेशन जो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर होता है एसआईपी में योगेश, उसकी कैपिटल प्रिजर्वेशन अपने आप हो जाती है, क्योंकि मान लीजिए आपका अपने एक एसआईपी की किस्त थी और आपका मान लीजिए एनएवी 100 से गिर के 90 पर आ गया, आपने दूसरी दी वो 92 पर आ गया, फिर आपने तीसरी दी, चौथी दी, करते करते धीरे धीरे वो जो आपका बेस लेवल उसको क्रॉस करता जाएगा। तो योगेश, आपने जो बात कही उसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि एसआईपी स्वयं ही ऐसा तरीका है जो कि कैपिटल प्रिजर्वेशन को ध्यान में रखता है। इनफैक्ट एसआईपी का एक ऑब्जेक्ट यही है, अगर मैं इसको इस तरीके से कहूं कि उसमें कैपिटल प्रिजर्वेशन का जो लक्ष्य है हमारा वो अपने आप फैक्टर इन हो जाता है। तो आप लंबे वक्त के लिए अगर योगेश बने रहेंगे तो वो कैपिटल प्रिजर्वेशन आपका अपने आप इंटैक्ट रहेगा। बीच में उतार चढ़ाव आते हैं, जब हम लंबे वक्त कहते हैं तो हम ऐसे इवेंट्स को, हम ऐसी घटनाओं को उसमें बीच में डाइजेस्ट करके चलते हैं। आपका दूसरा सवाल पीई का था। देखिए, पीई आइडियलिस्टिक, अगर भारत की आज 20-21 पीई है तो मैंने माना कि हमारी वियतनाम के मुकाबले, थाईलैंड के मुकाबले, शायद चाइना के मुकाबले थोड़ी ज्यादा हो, पर यह भी तो सच है योगेश कि भारत की जो ग्रोथ की रफ्तार है वो इन सब देशों से ज्यादा है और हमारी कंपनीज इन सब देशों की कंपनी से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो कोई ऐसा बेंचमार्क नहीं होता। वैसे मैं कहूंगा कि अगर 15, 16, 17 हो तो शायद बेटर हो, पर जिस कंपनी की ग्रोथ, जिस देश की और जिनकी कंपनीज की ग्रोथ की रफ्तार अच्छी होती है, वहां पर कई बार 20-21 भी अच्छी मानी जाती है। तो इसलिए ये बहुत ही रिलेटिव पैरामीटर है। इसको मैं अगर हिंदी में बोलूं योगेश, तो बहुत ही तुलनात्मक बात होती है कि हम इसको दूसरे से कंपेयर करके देखें, अपनी कॉर्पोरेट अर्निंग्स को देखें, तो थोड़ा और नीचे आए तो अच्छी बात है, पर अभी भी योगेश बुरे लेवल पर। हाँ, तो हम 23-24 पे पहुंच गए थे, 25 पे पहुंच गए थे, हम 26,000 क्रॉस किया था, अब ये थोड़ी सी करेक्ट होके आई है। मैं तो आपको कहूंगा अगर और नीचे आती है तो और अच्छा मौका निवेशकों के लिए है। वॉरेन बुफे साहब की मुझे बात याद है, जब सब खरीद रहे हो तो आप बेचिए, जब सब बेच रहे हो तो आप खरीदिए। तो आई थिंक ज्यादातर इन्वेस्टर्स का उल्टा करते हैं, वो डर जाते हैं और वो या वो फोमो के शिकार हो जाते हैं। तो योगेश, बहुत सवाल आपका बहुत अच्छा है, पर पीई इतनी बुरी नहीं है, थोड़ी सी बाकी के मुकाबले हाई है, पर हमारा देश भी उनसे हाई है अगर मैं ऐसे बोलूं तो। जी
बिल्कुल श्रोताओं, अब आइए जानते हैं कि सप्ताह के दरमियान हमारे दोनों ही प्रमुख घरेलू सूचकांकों ने कैसा व्यवहार किया। इस सप्ताह घरेलू शेयर सूचकांकों में लगभग 2% की गिरावट आई, जिससे पिछले दो हफ्तों से जारी बढ़त का सिलसिला टूट गया। वैश्विक अनिश्चितता, कच्चे तेल के ऊंचे दाम और आईटी क्षेत्र में भारी बिकवाली के असर ने निवेशकों की भावनाओं पर अपनी छाप छोड़ी। इस सप्ताह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1830 अंक यानी 2.3% गिरकर 76,664 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 456 अंक यानी 1.9% फिसलकर 23,898 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स में लगभग 1% की गिरावट आई, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 100 सूचकांक सपाट रहा। अगर मैं क्षेत्र विशेष की बात करूं तो निफ्टी आईटी इंडेक्स सबसे ज्यादा पिछड़ने वाला इंडेक्स रहा, जिसमें इस सप्ताह 10% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। ये बिकवाली उम्मीद से कमजोर मैनेजमेंट गाइडेंस के बाद हुई, जिससे वित्तीय वर्ष 2027 की कमाई के अनुमान को लेकर नई चिंताओं ने जगह बना ली। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रुपया इस सप्ताह 1.32 रूपये कमजोर होकर अमरीकी डॉलर के मुकाबले 94.25 रूपये पर बंद हुआ। और यही हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं शंकर। शंकर जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
नमस्ते मार्केट मंत्री टी।
नमस्ते
सर। अभी ये देखा गया है कि डिस्पाइट ऑल द फॉल्स इन द वेरियस सेक्टर, वन पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स have been doing very well. They have gone up by 5, 7, 8 or even 10% in last 1 month. What is the reason for this? This is one question. Second question is, how to identify that what is the next cycle which is coming? कुछ नीचे आती है तो कुछ चीजें ऊपर जरूर जाती हैं। ये cycle कैसे identify करें कि अभी इसका number आने वाला है? मुझे लगता है कि chemical का number अगला है।
शंकर, you're right. Power equipment manufacturing companies have done reasonably well. I think it is because of a few reasons. One of the prime reasons is that we are now almost power sufficient country. We are not a power deficient company. And the way, the rural India penetration is happening in power equipments, for example, inverters, refrigerators, other power generation equipment. I think the way things are catching up, because India has got a huge potential of power penetration, so which is leading to a very decent growth in these power companies. That is the reason for that. And I feel there is still a lot of fuel left in the power equipment manufacturing companies. Of course, the choice of your company has to be very, very careful. You asked about the next cycle. See, we in stock markets, we witness sector rotation. For example, sometimes you find FMCG going up, then defense goes up, then you're right, chemicals may come up, then power equipment comes up, then automobile starts rising, IT also takes turns. So, sector rotation, where it happens, Shankar, ye pehle se predict kar paana to mushkil hota hai. परंतु बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग, अब मैं सारा टेक्निकल एनालिसिस तो आपको यहां से बता नहीं सकता, जो टेक्निकल से हम लोग पहचानने की कोशिश करते हैं कि किस सेक्टर में अब आगे चाल आ रही है। ये तो रहा एक, पर इससे आपके लिए वो थोड़ा कठिन होगा, मुझे नहीं पता आप डेमा चार्ट्स और कैंडल रीडिंग में कितने अच्छे हैं वगैरह वगैरह, पर आपके लिए एक आसान तरीका ये है कि आप कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे नजर रखिए. अगर आपको कॉर्पोरेट अर्निंग्स किसी हर क्वार्टर में आती है, आपको पता होगा हर तीन महीने बाद कॉर्पोरेट अर्निंग्स आती है, आजकल सीजन चल रहा है. अगर कॉर्पोरेट अर्निंग्स आपको उस सेक्टर की ज्यादातर कंपनीज की, बहुत बहुत मजेदार बात मैं बता रहा हूं, अगर आपको ज्यादातर कंपनीज की कॉर्पोरेट अर्निंग्स अच्छी दिख रही है उस सेक्टर में, तो समझ लीजिए इसके दिन अब आने वाले हैं. दिन आने वाले बुराई में नहीं, अच्छाई वाले, मतलब इसके अच्छे दिन आने वाले हैं. यानी कि आप जो पूछ रहे हैं तो दिस इज द बेस्ट वे. उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको उस सेक्टर की सारी एक जैसी कंपनीज निकाल लीजिए और उनकी बॉटम लाइंस और टॉप लाइंस पे आप उसको प्लॉट करना अपने लैपटॉप पे कंप्यूटर पे शुरू कर दीजिए और आप देखेंगे कि आप ज्योतिषी बन गए. आपको लगेगा कि मैं तो प्रेडिक्ट कर पा रहा हूं आपका, वाकई में हो सकता है अगले दो महीने में, तीन महीने में, छह महीने में उनका, क्योंकि जो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी उसके स्टॉक्स चढ़ने ही चढ़ने हैं, ये बात तो पक्का है, मैं उम्मीद करता हूं. और हमें बताइएगा शंकर कि आपने ऐसा किया और किया तो आपने, आपकी भविष्यवाणी ठीक निकली कि नहीं निकली, और ये भी बताइएगा अगर बता सकें कि कितनी कमाई करी इस वजह से.
जी बिल्कुल शरद, बिहार से टिंकू हमारे साथ जुड़ रहे हैं. टिंकू जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
नमस्ते मैम.
नमस्ते.
नमस्ते सर.
नमस्ते टिंकू जी, कैसे हैं आप?
ठीक है सर,
बताइए.
आप लोग का हम बोले कि सर मैं बैंक गए थे और मेरे को पीपीएस अकाउंट में बोला था कुछ पैसा डालने के लिए.
जी.
उसका इंटरेस्ट रेट कुछ अच्छा बताया मेरे को. अब सर जो थोड़े देर पहले आप 50-50 बारे में बता रहे थे, 50-50
फिफ्टी फिफ्टी नहीं, निफ्टी 50.
हाँ हाँ
जी.
तो ये बैंक द्वारा होगा एसआईपी या डायरेक्ट चुनना पड़ेगा ऑनलाइन?
देखिए टिंकू जी, ऐसा है कि अगर आप खाली निफ्टी 50 करेंगे तो निफ्टी 50 के लिए तो फिर थोड़ा सा जानकारी होना जरूरी है. अभी आप जैसे आप बैंक गए थे तो बैंक में आप पीपीएफ किए, आप एनपीएस किए, मुझे लग रहा है वो ज्यादा अच्छा है. या तो आप मार्केट मंत्रा रोज सुनिए, किसी दिन छोड़िए मत इसको, फिर तो आप निफ्टी 50 कुछ दिन बाद शुरू कर पाएंगे. पर अगर आप सीधे निफ्टी 50 में छलांग लगा देंगे तो वो फिर थोड़ा सा कठिन हो जाएगा. तो मैं एनपीएस अच्छा बताया आपको बैंक ने, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि एनपीएस इज अ वेरी गुड ऑप्शन. और एनपीएस पर आपको जो आप, मुझे याद है आपने पिछली एक बार पूछा था, आपको किसी ने मिसगाइड कर दिया था, कुछ और लेने गए थे, कुछ और में करवा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए आपकी बार, ये ध्यान रखिएगा आप. तो इसलिए निफ्टी 50 करिए, हम मना नहीं करते, परंतु कुछ दिन और मार्केट मंत्रा सुनिए, तब तक के लिए आप एक एनपीएस भी हमारे कहने से शुरू कर लीजिए, मुझे लगता है बुरा नहीं रहेगा.
आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं केशव. केशव जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
नमस्कार जी, सर जी नमस्कार.
नमस्कार केशव.
सर आज आपसे एक सवाल मुझे पूछने का मन हुआ है कि जब से सोना हमारा 1.5 लाख 10 ग्राम है हुआ और चांदी 4 लाख तक पहुंच गई थी
जी,
अब तो कम हो गई है
जी,
तो इस हिसाब से तो हमारे देश की गरीबी तो काफी हद तक कम हो गई होगी, क्योंकि हर एक आदमी के पास कम से कम तो 50 ग्राम तो सोना होता ही है, चांदी होती है
जी.
तो हमारे देश की जो गरीबी है कितनी हद तक कम हुई है, थोड़ा आपका हम राय चाहेंगे.
देखिए केशव, गरीबी कम हुई है पर लोग बताते कहां है कि हमारे पास 50-100 ग्राम है, हर गृहिणी के पास, ये बात आपकी सच है. 30,000 टन एक जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई राजेश, 30,000 टन इज इंडियाज अनऑफिशियल स्टोरेज ऑफ गोल्ड इन द इंडियन हाउस होल्ड. हमारे यहाँ लगभग 30 करोड़ हाउस होल्ड है, हमने कैलकुलेट किया तो 100 ग्राम प्रति घर का, किसी के पास 500 होगा, किसी के पास 10 भी नहीं होगा. बिल्कुल, अब देखिए गरीबी का पैमाना अगर गोल्ड की होल्डिंग हो तो वाकई में उतने गरीब नहीं है, परंतु वो जो घर में पड़ा होता है ना केशव, झुमके पड़े होते हैं, वो कंगन, एक दो चूड़ियां मेरी दादी जी की पड़ी हुई हैं, एक हार मुझे मेरी मम्मी को शादी में मिला था वो अभी तक रखा हुआ है, वो तभी निकाला जाता है जब बहुत बड़ी मुसीबत घर पर आती है, वरना तो उसके साथ सेंटिमेंटल और इमोशनल वैल्यू जुड़ी होती है. अब देखिए गरीबी की परिभाषा क्या है केशव, इस पर डिपेंड करेगा. अगर मेरे पास 2 वक्त की रोटी नहीं है तो शायद मैं अपने कंगन बेच दूंगा, पर अगर मैं 2 वक्त की रोटी जुटा रहा हूं तो मैं उसको सेविंग की तरह अपने पास रखूंगा. भले ही मैं एक सब्जी से नमक से रोटी खा लूंगा पर वो कंगन मेरे पास रखे रहेंगे, ये बात तो आप मानेंगे. तो ये गरीबी का पैमाना देखना पड़ेगा केशव, कि आप क्या कह रहे हैं. मेरे से आप गरीबी कभी गरीबी पर डिस्कस करेंगे तो आपको मैं हैरान करने वाले आंकड़े दूंगा कि गरीब वाकई में कई दफे गरीब नहीं होता और अमीर वाकई में कभी अमीर नहीं होता है. जी
Moving on, the global crude oil prices barred early gains yesterday after reports that Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi was set to arrive in Islamabad, boosting optimism around potential progress in US-Iran peace talks. Yesterday, Brent crude futures settled moderately up at $105.33 per barrel. West Texas Intermediate crude futures dropped 1.5% to close at $94.40 per barrel. Over the week, Brent zoomed over 16.5% and WTI jumped 12.5%. Joining us now is Satish from Delhi. Satish, a warm welcome.
Thank you, sir. Thank you, Kohli Saab, sir, my question is that IT sector, this software development, field mein divert nahi kar sakta kyunki kuch companies ke share to 60% tak niche aa gaye. Aur dusra question ye hai ki IBC code mein jo ye haircut lete hain company ka liquidation apne company to usme kya koi IBC code mein limit hai ki aap itne se niche haircut nahi le sakte kyunki kuch company to 100 rupaye mein se 10 rupaye de ke 90 rupaye ka haircut le leti. Thank you sir, thank you.
सतीश जी, आपका पहला सवाल आईटी सेक्टर के बारे में, आपके पहले भी एक श्रोता ने आईटी सेक्टर के बारे में, दूसरे नंबर के वो श्रोता थे, उन्होंने अमित थे शायद, उन्होंने आईटी सेक्टर पे पूछा था, हमें खेद है इस बात का पहले तो. सतीश जी देखिए, राजेश और प्राची, मैं ये बात कहना चाहूंगा, हमें जब किसी भी कॉलर का, निवेशक का पैसा कम हो गया होता है तो अच्छा नहीं लगता है, ये तो सुन के अच्छा नहीं लगता है, ये तो नहीं कि तो मुझे लगता है सतीश जी अगर इतना ज्यादा लॉस में है तो मैं बेचने की सलाह तो नहीं दूंगा, मैं प्रॉफिट लॉस बुक करने की सलाह तो नहीं दूंगा. मैं आपको ये कहूंगा कि आप इसको अभी रख के बैठिए, अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो आप इसको होल्ड करिए. आपका दूसरा वाला सवाल बहुत साफ तो नहीं था, कुछ हेयर कट के बारे में आप कह रहे थे कि किसी कंपनी ने हेयर कट लेके 100 का अगर 10 रुपए, नहीं इसमें कोई, ये कोई कानूनी कार्रवाई कंपनी के खिलाफ ऐसे नहीं की जा सकती. कैपिटल मार्केट सतीश जी एक ऐसी मार्केट है जहां पर कंपनी को बहुत स्वतंत्रता दी जाती है, एक ओपन मार्केट है, कंपनी को अधिकार है उसका शेयर कितना चल रहा है और कल को वो बायबैक करती है. हालांकि मैं आपको कहना चाहूंगा कि कंपनी जब भी इश्यूज निकालती है तो एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है, सेबी की निगरानी होती है, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल अंधेर नगरी है, ऐसा नहीं है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज अपना काम करती हैं. परंतु हाँ, कुछ मामले में मैं चाहूंगा कि अब अगली बार हमें थोड़ा सा और बिना कंपनी के नाम लिए आप और स्पेसिफिक बताइएगा कि आप कह रहे हैं 100 रुपए के बदले में अब वो 10 रुपए दे रही, हो सकता है उसकी कंपनी की नेटवर्थ अब कम हो गई हो. देखिए, कैपिटल मार्केट में कुछ भी हो सकता है. एक मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जिन्होंने 10 रुपए का शेयर लिया था, प्राची आपको हैरानी होगी, आज वो 70,000 रुपए हो गए हैं. ऐसे भी लोगों को जानता हूं, और ऐसे लोगों को भी जानता हूं जहां 70,000 लिए थे आज वो 7 रुपए हो गए. तो ये मार्केट्स में चलता है, पर ऐसा कोई कानूनी, थोड़ा सा और खोल के बताइएगा तो मैं और अच्छा जवाब दूंगा.
मूविंग ऑन, द बेंचमार्क S&P 500 एंड द टेक हेवी नैस्डैक कंपोजिट क्लोज्ड एट रिकॉर्ड हाइज एज इन्वेस्टर्स वेट स्ट्रांग कॉर्पोरेट अर्निंग्स एंड साइंस ऑफ प्रोग्रेस इन US Iran पी स्टॉक्स. The Nasdaq Composite Index climbed over 1.6% to 24,837 and the S&P 500 jumped 0.8% to 7,165, while the Dow Jones Industrial Average dipped nearly 0.2% to 49,230. For the week, the Nasdaq advanced 1.5%, the S&P 500 gained over 0.5%, and the Dow dropped 0.4%. Sharad, what are your expectations from the Fed meet, which is scheduled from the April 28th?
Well, I would like to give a very nice farewell to Jerome Powell. this would be probably his last meeting, and very tricky situation for the U.S. economy at this point of time. Inflation building up. Geopolitical uncertainties are there. The new guy, Kevin Warsh, is in place. A lot of controversies floating around. So I think it's a very tricky. I'm sure Jerome Powell, while leaving, will not take any knee-jerk kind of decisions. And I think probably a neutral stance may be the best. You can't reduce the rates. And if he increases, God forbid, what is going to happen. So let's just wait and see as to what happens.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज सभी वित्तीय नियामकों से अपील की कि वह आम नागरिकों के लिए केवाईसी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए मिलकर काम करें. आज मुंबई में सेबी के 38वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है कि किसी भी व्यक्ति को विभिन्न वित्तीय उत्पादों और प्लेटफॉर्म्स पर एक ही सत्यापन प्रक्रिया बार बार न करनी पड़े. शरद जी, कार्यक्रम में आने और चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और एक अगर आप संक्षिप्त टिप्पणी दे आगे आने वाले सोने और चांदी के भाव को लेकर के.
आई थिंक सोना चांदी थोड़ा टाइम दबाव में रह सकता है. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर नजर रखिए, क्रूड ऑयल पर नजर रखिए, डॉलर इंडेक्स पर नजर रखिए, बॉन्ड ये सब आपस में रिश्तेदार बन चुके हैं, इन पे नजर रखिए. और सोना चांदी अभी जैसे सपेरा बीन को नचाता है, ऐसे ही सोना चांदी नाचने वाला है.
बहुत बहुत आपका धन्यवाद.
Before we close the headlines once again, West Asia diplomacy intensifies as U.S. envoys head to Pakistan. Tehran denies direct negotiations. Benchmark domestic indices snap 2-week rising streak. Sensex and Nifty tumbles around 2% and global crude oil prices surge this week. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.